जब मदीने से निकलने का इरादा किया तो हर एक से कहा, आपने आसपास वालों से कहा कि जो भी अमानत है, जिसने भी मेरे पास रखवाई है, उसको जाके फौरन अदा करने की कोशिश करो और अदायगी की तैयारी करो, और जब तक अदा न हो पाए हमारे साथ इस लश्कर में, इस जुलूस में, या कह सकते हैं इस कारवान में शामिल न होना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया ताकि शायद लोग सीख जाएं और इस रास्ते पर चलने लगें और उनको फिर से रसूल अकरम का दौर याद आ जाए और हक का रास्ता अपना लें। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। और बहरहाल मुहर्रमुल हराम के अय्याम चल रहे हैं, इस मुनासिबत से हम आप सबको ताज़ियत भी पेश करते हैं। आज मुहर्रम के वो तारीख़ें हम लोगों के सामने से गुज़र रही हैं जो आज से 1400 साल पहले अगर हम लोग वाकई करबला के दौरान होते तो बहुत ही हसास अय्याम थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर आके करबला में पूरे तौर से रुक चुका था और वहाँ पे खैमे बरपा हो चुके थे और हर एक एक ख़ास मौके की तैयारी कर रहा था। वो क्या चीज़ थी, यकीनन अगले चंद दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के सामने आती, जो आज हम एक वाक़े के तौर पर जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में, उसको एक कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही नाशिनाख्ता और अजीब व गरीब वाकया उनके लिए दरपेश था। इसके बारे में सोचने का हम लोगों को एक बार फिर मौका खुदा ने फराहम किया है, इस लिहाज से हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आइए एक वादा करें, 2 महीना है हम लोगों के पास तकरीबन, इसमें अगर हम लोग एक सहाबी के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबियों के अगर हम लोग जाके उनके बारे में मुतालिया कर लें तो हम लोग वाकई यानी शायद कह सकते हैं कि थोड़ा हिस्सा, 1000वां 1 10000वां हिस्सा हम लोग कह सकते हैं कि जो हक है आशूर का, जो हक है मुहर्रम का, उसको अदा कर सकें। तो आइए ये काम ज़रूर करें और आज से ही इसके बारे में कोशिश अपनी शुरू कर दें। मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ रुबाब बहन।
अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, और मैं अपनी नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करती हूँ। नाज़रीन, जैसा हसन भाई ने बताया कि अय्याम मुहर्रम चल रहे हैं और ये 10 दिन तो कुछ ख़ास ही अहमियत रखते हैं इस अय्याम मुहर्रम में, तो हमें जैसा हसन भाई ने यही बताया है कि एक सहाबी या एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक साथी के बारे में अगर हम ज़रा सी जानकारी या ज़रा सी उनकी ज़िंदगी पे एक रोशनी डाल दें। हमारे आजकल के नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे को ज़िंदगी में एक आइडियल शख्स जो हम कहते हैं, हम इन्हीं को बोल सकते हैं और एक राह, एक मशाल राह हमारे लिए बन सकते हैं।
बिल्कुल, इसमें खुद रसूल अकरम माफ कीजिए, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि जैसे सहाबी मुझे मिले, मेरे बाबा अली और मेरे नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिले, और आप आके इस्लाम का निचोड़ और खुलूस का निचोड़ आके आप वाकई करबला में देख सकते हैं।
बिल्कुल, हसन साहब पहले ही बता चुके कि वाकई करबला जो है, यानी आप उसका हर पहलू, अगर हर जो कहते हैं कि हम हर पन्ना उसका जो पलटें, हर पन्ने पे इसके एक अलग दर्स है, एक अलग सबक हमको मिल रहा है। हर ज़िंदगी के हर पहलू पे हमें इस वाक़े से एक सबक मिल रहा है। आप चाहे उसको सब्र व तहम्मुल का सबक ले लीजिए, यहाँ से आप इमाम हुसैन ने बेतहाशा सब्र, यानी एक बेहतरीन मुजाहरा, एक बेहतरीन नमूना सब के लिहाज से रहे, या हक पे डटे रहने की बात रहे, आप किसी भी लिहाज से देख रहे, कुर्बानी की बात रहे, यानी हर लिहाज से हमें गाइडलाइन की तरह, मैं बोल सकती हूँ हमें ज़िंदगी की गाइडलाइन की तरह ये वाक़ करबला हमारे लिए है।
यकीनन हम लोग नाज़रीन बहरहाल आपकी खिदमत में रहेंगे। इस वक्त 6:36 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक। चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। आप हमसे कैसे रब्ता कर सकते हैं उसका आपको अंदाज़ा हो सकता है। जी, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ईरान में और दुनिया की बहुत सारी जगहों पर, खुसूसन पिछले साल और उसके गुज़श्ता साल, ये 2 साल यानी ज़्यादा देखे गए ये वाक़यात के करबला की सरज़मीन पर ख़ास लोगों की आमद थी। शायद ख़ास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान रहे होंगे ये अफराद, और वो थे गैर मुस्लिम अकीदतमंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। शायद इस अकीदत की वजह सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत ना हो, बल्कि यानी उनसे मुत्तसिल जितने अफराद थे, चाहे यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, چاہے جو ان کے صحابی تھے۔ صحابیوں میں مختلف حتیٰ کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کا نام تھا جو اس سے پہلے عیسائی رہ چکے تھے، اور آخری دم تک انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ایسا ساتھ دیا کہ شاید کیا یقیناً کسی مسلمان نے اتنے بڑے میدان میں، جو بظاہر سارے مسلمان تھے، ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ ربا بین، جو واقعات ہم لوگوں کو کربلا کے ایام میں ملتے ہیں، اور یعنی خصوصاً عاشور کے دن کے جو واقعات پیش آئے ہیں، ان میں جو چیزیں دکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو نئے مسلمان تھے ان لوگوں نے ایسا دفاع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا کہ کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ باقی مسلمان تو بظاہر یزیدی فوج میں سبھی مسلمان تھے، لیکن ان لوگوں نے جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کی تو ان لوگوں نے شور کر کے، شرابہ کر کے، امام حسین علیہ السلام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ تمہارے شکم حرام سے بھر چکے ہیں۔
بالکل،
تو یہ حرام کا مال ہم لوگ، یعنی اگر ہم لوگ سوچ لیں کہ واقعی کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے عقیدے میں حتیٰ، تو ہم لوگ اس کی طرف گامزن نہ رہیں۔
آپ کی اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی کہ حرام مال، یعنی وہ زندگی میں آ ہی جانا، آپ کو زندگی کا صحیح راستہ ہے آپ اس سے ڈگمگا سے جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ عقیدت کے لحاظ سے ہو، اخلاقی لحاظ سے ہو، روحانی لحاظ سے، آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں، ہر لحاظ سے ایک انسان کو کمزور کر دیتا ہے یہ حرام مال جگہ زندگی میں آ جائے۔ تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے دین میں، اسلام میں، تمام جو ہمارے ائمہ ہیں یا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے، یعنی کہ اشارہ کیا گیا ہے اس طرف کہ کتنا ضروری اور اہم موضوع ہے۔ جی،
اس میں، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو واقعی یعنی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس ذریعے اپنا مال حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں پہ مذمت نہیں ہوئی ہے مال حاصل کرنے کے لیے۔ خود واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں وہ لوگ شامل تھے جو بہت بڑے بڑے تجار ہوا کرتے تھے اپنے دور کے، اور کوفے کے بہت مشہور شخصیات، اور اسی طرح پورے عالم اسلام میں ان کے سفر رہتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔
بالکل،
اور اس سلسلے میں یعنی جو اصحاب ہیں خاص، ان میں یہ تھا کہ بہت سارے جو امام حسین علیہ السلام سے دور چلتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو برپا ہوا ہے امت اسلام کے بیچ۔ لیکن ایک صحابی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کے رسول اکرم کے بعد انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی قافلہ چلا ہے کوفے کی طرف پہلے، تو وہ ساتھ میں ہو گئے تھے، اور یعنی فاصلے سے چل رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بلایا، ان کی اہلیہ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا چیز دکھائی کہ اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو کر انہوں نے ایسا یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پورے طور سے اسلام کا دفاع کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کا دفاع کیا، اور مکمل طور سے اس کے اوپر غور و فکر کیا کہ ان سے بڑھ کے، یعنی ان کا نام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔
بالکل،
ان کے بارے میں یقیناً اور بتاؤں گا۔
ضرور سے، یہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے وہ امام حسین کی جو شخصیت ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ بندہ اس طرف، جو آپ نے کہا وہ صحابی اس طرف آ گئے، لیکن بات یہ ہے کہ شاید انہوں نے دل کی سچائی سے اور دل کی گہرائی سے اس بات کو مانا، اور آخری دم تک امام حسین کے ساتھ رہے، تو پھر تو بہت ہی خوبصورت بات۔
اس میں ایک چیز جو میں ضرور بتانا چاہوں گا، وہ بہت ہی نقطہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ کل رات کو میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بہت ساری ہم لوگوں کی عبادتیں عادت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔
بالکل،
اور یہ عبادتیں جو ہیں وہ بہت ہی یعنی خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ جب بھی ہم، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر حتیٰ عزاداری میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امام باڑے میں جانے کے بغیر ہم لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا،
بالکل وہیں جانا چاہیے۔
بالکل، اور فلاں عزاداری اگر ہم نے نہیں کی تو ہمیں بالکل مزہ نہیں آتا۔ مزہ آنا تو یقیناً بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر ہم لوگ سوچ لیں کہ واقعی کیا یہ مزہ جو ہے خدا کو بھی پسند ہے یا نہیں، تو وہ جا کے صحیح ہوتا ہے۔ حتیٰ عام عبادات میں یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نماز توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ یقیناً یہ ہے کہ بہت سارے علماء، من جملہ آیت اللہ بہجت کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بہت ہی اہم واقعہ ہے میرے خیال میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بس تھوڑا سا ہٹ کے اس موضوع سے، لیکن بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، کہ ان سے پوچھا گیا کہ نماز اول وقت بہتر ہے یا پورے طور سے توجہ کے ساتھ نماز بہتر ہے، تو انہوں نے اس بات پر تاکید کی کہ نماز اول وقت، یعنی اس کو ارجحیت حاصل ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز جو کہی، لیکن بہت ساری عبادتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر خلوص کے ساتھ اگر ہم لوگ عبادت نہ کریں تو یقیناً ہم لوگوں کے لیے یعنی واقعی مضر ثابت ہو سکتی ہے.
بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک تو یہ خلوص ہونا نیت انسان کی کہ آپ اس وقت آپ کا دھیان، آپ کا وجود، آپ کی جو پوری جو وجود آپ کا ہے وہ نماز کی طرف ہو یا جو بھی عبادت یا عزاداری آپ کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. نہ کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا ہمارے کان ٹی وی کی طرف، اللہ نہ کرے کہ یعنی بہت ہی بری بات ہے، خیر کان ٹی وی کی طرف ہے یا آنکھیں کہیں اور ہے، انسان کا فکر یا سوچ جو اس وقت ہے. آپ شاید اپنے اعضائے بدن سے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن آپ کی سوچ بھی اگر کہیں اور ہے تو پھر میرے خیال سے وہ مزہ ہی نہیں ہے یا وہ بات ہی نہیں ہے اس نماز میں.
بالکل
سوچ یہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور اب اللہ کے حضور میں ہیں، تو اگر یہ سوچ سے آپ نماز پڑھیں تو اس نماز کا مزہ ہی کچھ اور جیسا آپ نے کہا ہو جائے گا، اور وہ نماز خدا کو میرے خیال سے زیادہ پسند بھی ہوگی.
یقیناً وہ زیادہ پسند ہے. اور ایک نماز تھی جو خدا کو سب سے زیادہ پسند تھی اور وہ تھی امام حسین علیہ السلام کی نماز، امام حسین علیہ السلام کا سجدہ عاشور کے ظہر میں. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی، ایک دو کافی دلچسپ چیزیں ہم تہران میں عزاداری کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. بہرحال ابھی تک ہم لوگوں کے مہمان پہنچے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پروگرام تب تک آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. ایک دو واقعات میں آپ کو ضرور سنانا چاہ رہا تھا. تو تہران میں عزاداری کے ایام ہوتے ہیں، ہر طرف، میں کل رات کو بھی دیکھ رہا تھا کہ جلوس نکل آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے. کسی کا کچھ نام ہے، کسی کا نام ہے محبین علی اصغر، کسی کا نام ہے محبین سار اللہ، اور کسی کا نام ہے عاشقان فاطمۃ الزہرا، اور بہت سارے اس طرح کے دیگر نام. لیکن ان کے پیچھے جو فکر ہے، جو کہہ سکتے ہیں عقیدت پائی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے ان میں. اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ضرور ہو. یہاں پر تہران میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ زرتشتیوں کہیں نہیں، جنہیں پارسی کہا جاتا ہے عام حالات میں، ان کا جلوس نکلتا ہے. پارسیوں کا جو علاقہ ہے تہران میں، کئی علاقے ہیں یعنی وہاں پر، عیسائیوں کے جلوس نکلتے ہیں، اور اسی طرح حتیٰ یہودیوں کے زنجیر مارنے کے جو جلوس ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں. اور عزاداری میں سب کا دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ برابر سے حصہ لیتے ہیں. مرکزی تہران میں ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں ایک بہت ہی مرکزی امام بارگاہ تو نہیں کہہ سکتے، کیسا ایک ٹیمپرری ایک امام بارگاہ ہے، آپ سمجھیے وہاں پہ خیمے لگتے ہیں اور عزاداری ہوتی ہے، وہ ہے حسینیہ سار اللہ. اور حسینیہ سار اللہ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر یقیناً مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. معاف کیجیے گا، میں کوشش کر رہا ہوں وہ تصویر ڈھونڈنا چاہیے ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو دیکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ عیسائی اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہوتے ہیں، اور خصوصاً آرمینین عیسائی جو ہیں اس علاقے میں، اور خصوصاً اس امام بارگاہ میں جا کے آ کر یعنی عزاداری کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں یعنی یہ چیز دیکھی گئی ہے، جو عقیدت ان لوگوں میں موجود ہے وہ واقعی بہت ہی یعنی خاص عقیدت ہے. اور حتیٰ یعنی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ذرہ برابر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کمی نہ آئے. اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، مسئلہ سے مطلب مثلا کسی چیز کی کمی ہو جائے، جو امام حسین علیہ السلام کے جو مہمان ہیں ان کو اگر مثال کے طور پر کھانے کی کمی ہو جائے، یا اگر سردی، آج کل سردی پڑ رہی ہے تو سردی زیادہ لگے، تو وہ فوراً اس کا انتظام کرتے ہیں. اصل منتظمین جتنے ہیں سارے عیسائی آرمینینز ہیں، اور بہت سارے یعنی نام بھی میرے سامنے اس وقت موجود ہیں. ایک چیز جو میں ضرور بتانا چاہوں گا، مثال کے طور پر ایک صاحبہ ہیں یانیس ان کا نام ہے، اور ان کا یہ ہے کہ میں خود ان سے مل چکا ہوں، یعنی واقعی جو چیز ان کی دیکھی گئی ہے کہ خاص قسم کی وہ مٹھائی شب عاشور بناتی ہیں، خاص قسم کے کہہ سکتے ہیں کہ شیر برنج وہ تیار کرتی ہیں، اور اس میں وہ پورے عقیدت سے یہ کام کرتی ہیں اور محلے میں بانٹتی ہیں. یا مثال کے طور پر ایک مٹھائی کی دکان ہے، یہ ہے تقریباً مشرقی تہران میں، وہ لوگ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر سال عاشور کی صبح کو آ کر خاص عقیدت سے مٹھائی بناتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے جتنے وہاں پر جو دیکھا گیا ہے کہ آ کر عزاداری کر رہے ہیں ان کے بیچ بانٹتے ہیں. اور جو چیز ان کی یہ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ذرہ برابر وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں خلوص میں میرے کمی نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے نام کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی ہونا چاہیے. جو یہاں کے اصل اسقف یا پادری جو ہوتے ہیں، پادریوں کے جو آپ سمجھے چیف جو ہوتے ہیں، ان سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے عقیدت वो जो है वाकई यानी हर हर कौम में पाई जाती है और इसमें मुसलमान होने की शर्त नहीं है। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही रुबाब बहन, एक मैं ज़रूर बताना चाहूँगा वो इस हवाले से है कि उन्होंने कहा कि अगर कयास किया जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानियाँ और जो उन पर दबाव था, अगर कुरान में भी उसका जिक्र मौजूद है, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से, तो ये जो है ये खुद दिखाता है कि किस हद तक इन लोगों का काम अहम है और हम लोगों को हर एक को शरीक करना चाहिए और अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करना चाहिए कि फलां खुलूस रखता है या फलां खुलूस नहीं रखता।
ये बात तो खुलूस की बात तो अंदर की बात है, हर कोई अपनी दिल की बात जानता है, उसका अल्लाह उसकी बात जानता है।
बिल्कुल,
तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि मेरे ख्याल से जो भी इधर हो, जो भी इस मनाजर को देखे या इस जो वाकया करबला को अच्छी तरह समझे तो मेरे ख्याल से खलूस तो खुद ब खुद ही आ जाएगा इंसान
यकीनन।
के अंदर।
इसमें चंद रात पहले एक प्रोग्राम तेहरान में मुनक्किद किया
जी
गया था, मैं बस ये बताता चलूँ और फिर
ज़रूर
एक ब्रेक लेते हैं,
नहीं
वो ये कि गैर मुस्लिम शोरा जो इमाम हुसैन
जी
अलैहिस्सलाम की शान में जिन लोगों ने जिन्होंने अशार कहे थे, मिन जुमला प्रोफेसर धर्मेंद्र नाथ इस ईरान में मौजूद थे
जी
और उन लोगों ने जो उनके अशार थे वाकई उसमें हम लोग
जी
खुलूस का मुकम्मल तौर से मुशाहिदा कर सकते हैं।
जी हसन भाई, हमें कहा जा रहा है कि हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मोहतरमा समीरा जैदी साहिबा, मेरे ख्याल से इरम नकवी साहिबा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम
अच्छा,
वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम,
कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
मोहतरमा साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहला सवाल तो कि मुहर्रम का जो महीना है, साल का पहला महीना, इस्लामी साल का पहला महीना है, ये हमें क्या दर्स देता है?
सबसे पहले तो ये शुरू ही इससे होता है कि हम लोग इमाम हुसैन की आज़ादारी के उससे, और एक ये जो खास एक देखें एक किस्म का इनकलाब होता है लोगों की जिंदगी में कि हर एक आप देखें अपना घर सब छोड़ के बच्चों को लेके निकले होते हैं। हम लोग खास तौर पे देखें ये मजालिस में और सब कुछ जो है, इंसान को एक तरह से ये होता है कि जब ये मौसम आता है उसमें इंसान को अपनी भी फिक्र नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि वही जाके देखे कि इमाम की जिंदगी में क्या हुआ किस तरह से, और हर साल वो चीज़ जो है तकरार होती है और उसमें वो चीज़ कभी भी जैसे देखें ना आप उसको कभी भी ये चीज़ पुरानी नहीं होती, हर साल अपनी उसी नयापन और वही चीज़, और इंसान उसी तरह गमगीन और वही सब कुछ जो है दोबारा
उसी नीयत से उसी जज्बे से आगे आते हैं। बिल्कुल
जी।
मैं आपसे एक सवाल और ये पूछना चाहूंगी कि इमाम हुसैन की जिंदगी तो खैर हमारे लिए मशाल राह मैं इस तरह बोल सकती हूँ कि है तो उसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन आप क्या कहेंगे कि हमें इस वाकये जो वाकये करबला जो है हमारे को किस तरह यानी गाइड करता है, नौजवान नस्ल को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी, किस तरह हमें गाइडलाइन देता है जिंदगी के लिए?
इसमें जैसे हम देखते हैं ना कि एक आपने मशहूर हदीस सुनी होगी कि इमाम हुसैन के लिए कहा जाता है सफीना तो निजात है और मिसबाह जो है हुदा, वो यानी एक वो जैसे कहना चाहिए कि निजात की किश्ती और हिदायत की रोशनी। तो इसको जब देखें कि हम जवानों को या खुद हम लोग जब देखें कि जो इस किश्ती में जो सवार होंगे जो इसके साथ रहेंगे वो निजात पाएंगे, तो किस तरह से कि हमें उनकी जिंदगी का जो भी हमें अपने लिए उसवा हसना बनाना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने करके दिखाया, आखिर वो अगर उस जमाने में देखा जाए कि वो जंग जो थी जो उन्होंने लड़ी वो कोई इक्तदार की जंग तो नहीं थी कि उनको कोई हैसियत या कोई मकाम था कोई चाहिए था और उसके लिए वो अपने बीवी बच्चों को घर वालों को लेके निकले, वो तो एक इकदार की जंग थी, उसमें जो है कदरें मुशख्खस हो रही थी और वो निकले थे कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज़ मुनकर के लिए और एक जो है साले हुकूमत कायम करने के लिए। तो हमें जिंदगी में यही देखना होगा कि जो कुछ जो था वो जो एक ये वाकया जो था ये किसी खास यानी कोई दुनियावी मकाम के लिए नहीं था, इसमें सब कुछ ये हमारे लिए होना चाहिए कि इंसान देखे कि जो हमारे अइमा ने अंजाम दिया वो इंसान अपने लिए मशाल राह बनाए और उस वाकई उस किश्ती में अगर हम सवार होंगे तो हम निजात पाएंगे या हम उस चिराग की रोशनी के जेर साया रहेंगे और उसके यानी उसके पीछे चलेंगे तो हमारे लिए ये निजात का बायस होगा।
बिल्कुल, मैं ये एक सवाल जो भी मेरे जहन में
अच्छा एक माफ कीजिएगा अभी हम साथी हमारे बता रहे हैं ब्रेक लेना है, सवाल इंशाल्लाह हम लेकर मोहतरमा इरम नकवी साहिबा की खिदमत में हाजिर रहेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी। इस वक्त हम लोगों की गुफ्तगू हो रही है मोहतरमा इरम नकवी साहिबा से आशूर के बारे में और इस सकाफत के बारे में और इस तहज़ीब के बारे में जो उसके पीछे है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे इरम नकवी साहिबा, वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
जी
आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक भी शुरू जो हुई तो उन्होंने यही कहा था कि मैं अपने जद के जो यानी सारे जो उसूल थे उसको फिर से कायम करने आया हूँ। क्या ये
जी
उसूल ख़त्म हो गए थे?
नहीं, असूल खत्म तो नहीं हुए थे, लेकिन जैसे वक्त के उस लिहाज से बदहम हो रहे थे, तो इस वजह से जो है इमाम ने ये फरमाया। और वही जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि वही जैसे रसूल खुदा की उसका असल जो मकसद तो हमारा जिंदगी में जो देखा गया तो वो यही था उनका कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज़ मुनकर, और उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उनका भी असल मकसद तो यही था जिसको लेके। और फिर इस चीज में जब हम देखते हैं कि जब वो खास तौर पे अपने साथ औरतों और बच्चों को लेके निकलते हैं, तो ये एक मामूली यानी जंग उस वक्त नहीं कहा जा सकता, यानी ये कोई मामूली काम नहीं था कि दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों में भी देखें कि कभी इंसान औरतों और बच्चों को साथ नहीं लेके जाता। तो ये जो था मकसद, ये इतना अजीम था कि उसमें उन्होंने ये सब जो है शायद यही चीज उनके मलहूज खातिर थी कि भाई जो मुझे अपने जद का जो है जो उनका यानी मकसद था वही उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो है मैं निकल रहा हूँ और उसमें जो है ये सब कुछ उनको करके, यानी एक वो देखा जाए अगर उस हिसाब से कि एक आम नहीं था कि इंसान 72 लोगों का 1000 लोगों के साथ या इतने लोगों के साथ जंग करना जो एक मामूली चीज नहीं थी। और जिसको देखें कि आज तक जो कामयाबी है उन लोगों का नाम जो उनके मुखालिफ थे, नाम उनका खत्म हो गया, नीस्त नाबूद हो गया, और लेकिन उनका नाम आज भी कायम है, तो ये मकसद खुदाई था
यकीनन आपस
इसके।
में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यानी क्या था इन दोनों के बीच के कोई और मुसलमान इस काम को यानी इस्लाम को फिर से ज़िंदा करने के लिए नहीं उठा बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस काम के लिए उठे?
ये रिश्ता भी जैसे देखना ठीक, ये एक एक आम जैसे रिश्ते होते हैं कि वो नाना और नवासा का रिश्ता नहीं था। इसमें भी जाहिर है कि जो एक तो सबसे पहली तरबियत वही रसूल खुदा की थी कि जिस जैसे हम देखते हैं उनके बचपन के से लेके जो उनके हम सुनते हैं कि भई रसूल खुदा की तरबियत जब वो पैदा होने से लेके जब तक कि उनकी जिंदगी में रसूल खुदा की जिंदगी में थे, तो वही तरबियत थी उनकी कि जिन्होंने रसूल खुदा की तरबियत नहीं उनको इस चीज के यानी उस दीन को जो है बचाने के लिए और इस तरह से ये सब काम जो उन्होंने किया उसको अंजाम देने के लिए, जो असल में मेरे ख्याल में वो एक सिर्फ एक दुनियावी रिश्ता नहीं था, जो एक रूहानी रिश्ता था जो कि जिसकी वजह से।
जी बहुत बहुत शुक्रिया इरम नकवी साहब, आपने अपना वक्त दिया बहरहाल सुबह को और इतनी जल्दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
बहुत शुक्रिया आपका।
नाज़रीन हम लोग गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आशूर की तहजीब और मुहर्रम की तहजीब के हवाले से चलेगी। एक
जी
चीज़ मैं बताता चलूँ बस, एक और जो वाक़या कल तेहरान में और दुनिया के 55 ममालिक में साथ में मुनक़िद किया गया, वो था हज़रत अली
अली
असगर
असगर जी
अलैहिस्सलाम के हवाले से। जो ख़वातीन हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वो जाके कह सकते हैं इमाम यानी अपने बच्चों का नाम उस राह में शामिल करना
बिल्कुल
चाहती
बिल्कुल।
हैं जिस पे हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम चले थे।
और इत्तेफाकन हसन भाई कल कुछ मैं टीवी पे देख रही थी और मेरे घर के पास भी एक जलूस आया, तो मैं आपको सुबह में इसी बारे में बात कर रहे थे कि इतने खूबसूरत मनाजर थे नौजाद बच्चों को, लाइक उन्होंने वो हरे कपड़े या यहाँ पे लब्बैक या हुसैन का नाम से जो लगाया था, बहुत खूबसूरत मनाजर बहुत, यानी अगर आपके पास ईरानी चैनल्स हैं या जो देख रहे हैं इस वक्त या आप यहाँ खुद ईरान में हैं तो आपने भी देखा होगा, यानी मेरी तो आंख भर आई, यानी मुझे।
बिल्कुल
और
इस
बाद में मैं ये बताना चाह रही थी कि जो जलूस जो कल निकले थे, ज़्यादातर अगर आपने देखा हो बच्चे जो थे वो जलूस को अटेंड कर रहे थे या वो जो बच्चे जो नोहा खानी कर रहे थे वो बच्चे थे, बहुत खूबसूरत मनाजर थे, एक तरह से दिल को छू लेने वाले मनाजर।
इस सिलसिले में यानी ये कहा जा सकता है कि
बिल्कुल
हम लोग अपने बच्चों को भी उस तहजीब से यानी
बिल्कुल
उनको आशना कराना चाहते हैं,
देखिए
उनको
नौजादी
बिल्कुल
से बच्चों को आशना करा रहे हैं, मतलब बच्चों को गोद में उठा के वो ले जा रहे हैं
यानी वो
वहां पे।
उस वक्त से उनमें वो शिनाख्त की यानी
बिल्कुल
मैं कह सकते हैं कैपेसिटी होती है, उनमें
बिल्कुल
वो सलाहियत मौजूद होती है कि
जी
वो चीज़ें सीख
समझ
सकें और
सके
समझ सकें।
बिल्कुल
और इस सिलसिले में यानी वाकई कहा जाता है इतना बच्चा पैदा होने से पहले बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है और सुन
बिल्कुल
रहा होता है और समझ रहा होता
बिल्कुल।
है।
बच्चा तो इस रविश में ही होता है हसन भाई कि वो हर रोज़ एक नई चीज़, आप इस तरह बोले एक नई चीज़ खोज रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, एक नई चीज़ सीख रहा होता है, तो क्यों ना बेहतर हम इस तरह कुछ करें कि वो एक इस्लामी राह पे, एक इस्लामी ज़िंदगी पे, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो वाक़या कर्बला है इससे कुछ सीख सके और अपनी ज़िंदगी में इसको एक तरह से आप बोलिए इससे फ़ायदा उठा सके।
यकीनन
बिल्कुल
इसमें जो आपने कहा कि जुलूस बच्चों के जो निकले
जी
थे या जो प्रोग्राम्स हुए थे, और ये सिर्फ ईरान के हद तक महदूद
जी
नहीं, ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी जगह पर, जो
बिल्कुल
तेहरान में बहुत ही बड़ा यानी जलसा कायम हुआ था, या इसी तरह मशहद मुकद्दस में,
जी
कुंभ में जो खबरें मौसूल हुई थी। लेकिन जो चीज़ देखी गई वो ये है कि ये तहरीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ये मिशन दुनिया भर में फैल गई है। 55
बिल्कुल
ममालिक कोई कम नहीं है दुनिया में, इस वक्त कुल जो है 100 कहा जाता है, 150, तकरीबन 150 ममालिक
जी
मौजूद हैं। 55 यानी एक तिहाई उसका हिस्सा, और
बिल्कुल
ये बहुत ज़्यादा अहम है।
माशाल्लाह,
तो
ये बोलना
नाज़रीन चलते हैं एक
चाहिए।
ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।
हमारे साथ हमें कहा जा रहा है कि कॉलर है, द्वारा फिर से
अच्छा
लाइन पे
अच्छा
है,
कॉलर है।
मुश्तबा
अच्छा मैम,
जी, मुश्तबा अली साहब हमारे साथ, हमें कहा जा रहा है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम
जी, मुश्तबा अली साहब कैसे हैं आप?
जी मैं मुश्तबा अली, कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ।
जी बहुत बहुत खुश आमदीद, तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका।
मुहर्रम के हवाले से मुश्तबा
जी
अली साहब, मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बताइए कि एक तो आप क्या समझते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक ने हमें क्या सिखाया है?
जी सबसे पहले मैं जो तमाम इस अजीम सानहे पर तमाम आलम इस्लाम, खुसूसन रहबर मुअज्जम और वक्त के इमाम हजरत इमाम महदी वली, हजरत इमाम महदी अजल्लाह ताला फर्जी शरीफ की खिदमत में हदीये ताजियत और तसलियत पेश करता हूँ।
जी मुश्तबा अली साहब, हम लोग गुफ्तगू जैसा कि आपने भी इसी तरह से शुरू किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक और से के बारे में है, तो इसके बारे में आपके, एक तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी किस हिस्से को मुतासिर किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस तहरीक ने, और आप क्या समझते हैं कि ये रास्ता क्यों अब तक 1400 साल तक अभी तक कायम है आपके ख्याल में?
जी,
हेलो नाज़रीन, मेरे ख्याल में रब्ता मुनक़ता हो गया है हमारा मुश्तबा अली साहब से। इंशाल्लाह अभी हम लोग उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसी हवाले से मैं एक चीज़ बताता चलूं कि जो दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं उनमें शामिल है इंडोनेशिया में, जो वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। मैं चंद दिन पहले पढ़ रहा था, और पिछले साल मुझे याद है कि मुहर्रम के दिनों में मैंने ये पेश भी किया था नाज़रीन की खिदमत में कि वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, खुसूसी एक ख़ास किस्म के कह सकते हैं कि कश्ती बनाकर, पानी का जहाज़ बनाकर उसके ऊपर चिरागें जलाकर और उसे समंदर में छोड़ देते हैं। अब मज़ेदार बात यह, दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक के बारे में बस एक नाम उन्होंने हुसैन सुना है, उनको नहीं मालूम ये शख्स कौन थे। यानी ख़ास चीज़ ये है इस पूरे कह सकते हैं जो वाकया है उसमें, ये कि लोग सारे ये काम करते हैं और उसे एक बहुत ही तारीखी और मजहबी कह सकते हैं मेले के तौर पर मनाते हैं, उनको उसकी हकीकत के बारे में नहीं मालूम। लेकिन वो होता है 10 मुहर्रम को, और हर साल ये मुनाकिद किया जाता है। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहम है कि यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक कहाँ तक इस वक्त पहुँच गई है। टेलीफोन लाइन से मेरे ख्याल में फिर से हम लोगों का रब्ता हो गया है।
जी हमें कहा तो यही जा रहा है फिलहाल
अच्छा
की रब्ता हो गया जी।
हेलो
जी,
हेलो सलाम अलैकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी, मेरे ख्याल में लाइन हम लोगों की कट
जी।
गई थी। हेलो
हेलो
जी, बताइए, फरमाइए।
जी, मुहर्रम अल हराम का जो ये मुकद्दस महीना है, असल में बेदारी का महीना, आलम इस्लाम के लिए एक बेदारी का महीना है। जो
अच्छा मुश्तबा अली
और
साहब,
जबकि दुनिया के
मुश्तबा अली साहब, एक चीज़ जो मैं पूछना
जी
चाहूँगा आपसे वो ये है कि चलें इसको थोड़ा और आसान बना दें, कश्मीर में किस तरह मनाया जाता है?
जी यहाँ पर जो ये आजादारी का सिलसिला है, बहुत ही कदीम, बहुत ही तकरीबन एक सदी पहले से।
मेरे ख्याल में लाइन इस वक्त बहुत सही तौर से नहीं जा रही है। हमारे
बिल्कुल
साथियों से हम कहेंगे कि बहरहाल जब सही तौर से हो जाए लाइन तब हम लोगों से रब्ता करवाएं।
जी
एक चीज़ यानी यही जो हम लोगों की गुफ्तगू चल रही है इस हवाले से कि मुख्तलिफ
बिल्कुल
जगहों पे क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, इस हवाले से एक मैं बताऊंगा जो मरकज़ी अमरीका में भी होता है
जी
प्रोग्राम, इसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा, लेकिन पहले चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं।
السلام علیکم، میں آصف خان جو ایک مسافر ہے دہلی سے سفر کرتے ہوئے جے پورہ پہنچا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے جے پور کا ذائقہ آپ تک پہنچانے کے لیے میں جے پور آ چکا ہوں۔ مختلف علاقوں میں جو ہے بازاروں میں گھوم رہا ہوں، عمارتوں کو دیکھ رہا ہوں، پرانی عمارتوں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ تک اس کا ذائقہ پہنچا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے پیچھے جو ہے ایک عمارت ہے جس کا نام ہے ہوا محل۔ یہ بہت پرانی عمارت ہے، 1799 میں راجا پرتاپ سنگھ نے اس کو بنایا تھا، جس میں جو ہے 253 جو ہیں جھروکے ہیں، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں جن میں سے جو ہے جو اندر رانیاں جو حرم ہوا کرتا تھا، حرم دھیان دیجیے گا، جو حرم میں جو ہے رانیاں جو ہوا کرتی تھی ان کو باہر کی دنیا دیکھنا، مطلب باہر جو ہے آنا ان کو جو ہے پابندی تھی، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ باہر جو ہے بازاروں میں آنا جانا شروع کریں، بٹ وہ جو ہے اندر انہی کھڑکیوں سے، جو پیچھے آپ کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں ان کی جو ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 253 ہیں، اور انہی کھڑکیوں سے وہ جو ہے باہر کی دنیا کو دیکھا کرتی تھی، نیچے جانے والا جو ٹریفک ہوا کرتا تھا اس کو نہارا کرتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی زندگی جو ہے پوری طریقے سے جو ہے قید ہو چکی تھی اس محل کے اندر، بس یہ کھڑکیاں ہی ایک سہارا تھی جن کی وجہ سے جو ہے وہ باہر کی زندگی سے روبرو ہوتی تھی۔ راجپوتانہ ایک آرکیٹیکچر جو ہے بہت پرانا آرکیٹیکچر ہے ہندوستان کے اندر، مغلوں سے پہلے کا ہے۔ یہاں راجستھان کا ایک اپنا ہی الگ ذائقہ ہے، اپنا الگ ہی آرکیٹیکچر ہے، کیونکہ راجستھان کے اندر جو ہے اراولی کی جو پہاڑیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تو وہاں سے جو ہے پتھروں کو تراش کے توڑ کے لانا جو بہت بڑی بات نہیں تھی اس دوران، کیونکہ جو ہے اگر دہلی کی بات کریں، دہلی میں جو ہے اگر بہت پرانی عمارتیں جو بنی ہیں وہاں جو ہے پہاڑوں سے پتھر لانا جو ہے لاد کے لانا تھوڑا سا مشکل تھا، بٹ خود راجستھان جو ہے بہت سارے پہاڑ ہیں، پہاڑوں پہ سے پتھر لا کے جو ہے ان کو توڑ کر تراش کے جو ہے محل بنانا یا اس طرح کی کچھ عمارتیں بنانا تو بہت زیادہ مشکل نہیں تھی، بٹ اس کو جو ہے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، کیونکہ یہ اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ راجا ادے پرتاپ سنگھ، راجا پرتاپ سنگھ نے اس کو 1799 میں بنایا اور اس کا نام جو ہے ہوا محل رکھا، اور بہت کم وقت میں اس کو جو ہے تعمیر کرایا۔ اس کے اندر جتنا بھی ڈیزائن ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے دروازے اس میں جو ہے ہرے رنگ کے دیکھ رہے ہیں، اس میں اندر شیشوں کا جو بھی کام ہے وہ سارا اوریجنل کام ہے، مستقل تب سے جو ہے ابھی تک کنٹینیو چل رہا ہے۔ سال بھر میں ہزاروں جو ٹورسٹ ہیں وہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہزاروں نہیں، تھوڑا غلط ہوں میں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس کو وزٹ کرنے آتے ہیں، اس عمارت سے روبرو ہونے آتے ہیں۔ یہ عمارت جے پور میں خاص مقام رکھتی ہے، اس کو ہوا محل کے نام سے جانتے ہیں۔ کبھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں۔ باقی آپ جب بھی ہندوستان آئیں، جب بھی جے پور آئیں، تو آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ ہوا محل تک پہنچیں۔ دیکھیے اس میں اندر جانا ایسا اجازت نہیں ہے کسی کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو یہاں کا شاہی خاندان ہے وہ آج بھی جو ہے جے پور میں رہ رہا ہے، تو ان کی کچھ نہ کچھ ابھی بھی چلتی ہیں، تو لوگ اس نیچے سے ہی جو ہے اس کو، اس کا نظارہ جو ہے دیکھتے ہیں، اس سے جو ہے روبرو ہوتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اسی سڑک پر پیچھے کی طرف میں دکھانا چاہوں گا، پیچھے آپ کے بیک سائڈ میں اگر میں بولوں، یہاں پیچھے جو ہے ٹریفک رکتا ہے اس طرف، اور لوگ جو ہیں یہیں سے رک کر جو ہے اس کو دیکھا کرتے ہیں، مطلب وہ یہیں سے جو ہے اس کو نہارا کرتے ہیں، اس کا لطف اٹھایا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت عمارت ہے، مطلب اگر ایک بار اگر اس کو دیکھنا شروع کر دیں ہم تو اس کو ہم صرف دیکھتے رہیں گے ٹکٹکی لگایا ہوا، جیسا اب میں کرنے والا ہوں، میں صرف اب اس کو دیکھنے والا ہوں اچھی طریقے سے، اس کو اپنی آنکھوں میں بھرنے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنی آنکھوں میں بھر کے، آنکھوں کے کیمرے میں قید کر کے اس کو میں اپنے دہلی شہر لے کے جاؤں۔ میں آصف خان جو ایک مسافر ہے دہلی سے جو ہے تشریف لے کے آیا ہے جے پور، اور آپ کو جو ہے مختلف قسموں کے جو ہے یہاں کے جے پور کے ذائقے جو ہیں آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ایک ذائقہ میرے پیچھے ہے، بالکل بہت اچھا شاندار ذائقہ ہے، تاریخی طور کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو 1799 میں اس کو جو ہے ہوا محل کو بنایا گیا تھا۔ صرف ہوا محل کی بات نہیں ہے، ہم اس وقت جے پور کے پرانے جے پور میں ہیں، جیسا دہلی میں ہے، دہلی میں اولڈ دہلی ہے، اسی طریقے سے جے پور میں جو ہے پرانا جے پور ہے، جس کو پنک سٹی، گلابی شہر کے نام سے जाना जाता है। जयपुर को हिंदुस्तान का पेरिस भी कहा जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। गुलाबी शहर इसलिए कहा जाता है, वायसराय जो इंग्लैंड के हैं, इंग्लिस्तान के, वो जब जयपुर तशरीफ ला रहे थे तो जयपुर के शाही खानदान ने जो है पूरा का पूरा शहर गुलाबी रंग से जो है सजा दिया था, गुलाबी रंग से जो है पूरा उसको पेंट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ उनके इस्तकबाल करने के लिए। आज तक मुस्तकिल जो है बहुत सारी इमारतें, मतलब ज़्यादातर जितनी भी इमारतें हैं वो पिंक हैं, इसलिए इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो इस गुलाबी शहर के कुछ और ख़ास इमारतों से मैं इंशाल्लाह मैं आपको रूबरू कराऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक मुसाफिर हूँ, फिर मिलूँगा आपको किसी और मकाम पर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।
जी नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी। अगर आपको आपके ज़हन में, हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे इसके बारे में कि बहरहाल आशूर में हर कौम, हर तबके, हर कह सकते हैं कि एज के लोग मौजूद थे, और हर तबके से इस लिहाज से कि आप समझ देखिए कि ताजर उसमें मौजूद थे, और उसमें ऐसे लोग भी थे जो यानी कहें कि कोई ख़ास कारोबार उनका ऐसा था कि पूरे आलम इस्लाम में उनका नाम था और वो वहाँ पर मौजूद थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। एक यानी कमसिन लोगों में भी वहाँ पर हज़रत अकर अलैहिस्सलाम और इसी तरह हज़रत औन मोहम्मद का नाम सबसे ज़्यादा मिलता है, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे। और जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि उन्होंने भी पूरे तौर से इस्लाम का जहाँ तक हो सका और जहाँ तक उनके बस में था उसका दिफा किया, और पूरे तौर से कोशिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलें। माओं का किरदार भी यहीं पे हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के गुफ्तगू में अपने बेटों से देखने में आता है कि कैसे उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फिदा होने के लिए उनको कह सकते हैं कि उनको समझाया पूरे तौर से।
आपकी बात बहुत यानी अहम बात है, और अगर हो सके तो हमारे साथ कॉलर मौजूद है, इसी बारे में इंशाल्लाह कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
रابطہ हम लोगों का मुनक़ता हो गया, हमारे साथ ही
अच्छा
बता रहे हैं।
फिर से मेरे ख्याल से लाइन
हो गए, हाँ लाइंस।
हम जाते हैं, फिर छोटा सा वक्फा लेते हैं अगर आप इजाज़त दे हसन भाई, तो फिर फरीदुन साहब की आवाज़ में एक तराना सुनते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर।
नाज़रीन, फिर से आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी, 7:19 हो रहे हैं, और कल के बारे में भी बताते चलें कि इसी हवाले से इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होती रहेगी हम लोगों की मुहर्रम के हवाले से, और इंशाल्लाह हमारे साथ ही कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें। एक चीज़ जो हम बताना यही चाह रहे थे उस वक्त से, और बीच में और 2 मिनट का ब्रेक जाके लेना पड़ रहा है, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक को अगर हम लोगों को समझना है तो यकीनन उस रास्ते को समझना होगा जो उसके ऊपर चले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लिए काम नहीं किया, इसीलिए तमाम हमारी ख़वातीन जो हैं वो इमाम हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम से, जिनको बाबुल हवाइज भी कहा जाता है, उनसे जाके तवस्सुल करती हैं और उनके रास्ते को अपनाना चाहती हैं, ताकि आज की नस्ल अगर हमारी सुधर गई तो यकीनन हम लोगों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल होगा।
बिल्कुल, आपकी बात तो ये बिल्कुल यानी कोई शक नहीं है कि माओं का अहम किरदार है। आप अगर देखिए तो ख़ुद वाकई करबला में ख़वातीन का कितना अहम किरदार रहा, अब चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, हर लिहाज से एक सपोर्ट, एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं। तो आजकल की ख़वातीन को भी ऐसा ही चाहिए कि हमारी, हम जैसी जो ख़वातीन हैं जिनके पास जो आइंदा जो मुस्तकबिल हमारा बना रहे हैं, नहीं बच्चों से आप देखिए अपने बच्चों को इस तरह की परवरिश दें, ऐसे मजालिस में, ऐसे रोज़ों में हतमन अपने बच्चों को साथ लेके जाइए। ज़रूरी आपसे ख्वाहिश है हमारी कि हमारे बच्चे कुछ सीख सके, कुछ जान सकें बेहतर तौर पर।
यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम बात आपने कही, और इस सिलसिले में जो ख़वातीन का किरदार मिलता है असल उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम उनके साथियों के शहादत के बाद। खुदा हमें तौफीक दे के हम सही तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चल सकें
इंशाल्लाह।
और हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।